क्विंस पॉडकास्ट।
जब मैं 12 साल का था तब मुझे कैंसर हुआ था और मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आया, और जब ट्रीटमेंट के एक एक्टिव फेज के बाद जब मैं वापस गांव गया तो वहां पे बहुत ज़्यादा स्टिग्मा झेलने को मिला मुझे। मेरे दोस्त मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे साथ खेलते नहीं थे। उसके बाद मैंने फिर अपने फादर से बोला मुझे अपना गांव वापस नहीं जाना है।
ये आवाज़ चंदन कुमार की है जिन्होंने बचपन से ही कैंसर के साथ लड़ाई लड़ी और जंग जीती है। इनसे और इनकी पत्नी ऋतु दोनों से ही आपको मिलवाएंगे, दोनों ही कैंसर सर्वाइवर्स हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। शुरू करने से पहले मैं आपको सुनवाता हूं टेड टॉक के मंच पर एक लड़की द्वारा दिए गए भाषण को।
अगर मैं आपको ये कहूं कि एक 16 साल की लड़की ने नाव चलाने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है जिसमें उसे 165 किलोमीटर का सफर तय करना था, वो भी 2 दिनों के अंदर, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लड़की लंबी चौड़ी, स्ट्रॉन्ग और एक एथलीट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं हूँ।
दरअसल टेड के मंच पर थी सैमी जेनवर, जो महज 3 साल की उम्र से कैंसर से पीड़ित रही, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। वो मजबूती के साथ जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रही है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो चाइल्डहुड कैंसर है। WHO के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर साल 4 लाख बच्चों को कैंसर हो जाता है। इस आंकड़े में 19 साल तक के टीनेजर्स भी शामिल हैं। कैंसर गंभीर बीमारी तो है ही, लेकिन जरा सोचिए अगर एक बच्चे को ये हो जाए तब क्या क्या हो सकता है। लैंसेट ऑन्कोलॉजी कमीशन ने 2020 में एक अनुमान के तहत बताया कि अगले 30 साल में 1,37,00,000 बच्चों में कैंसर डायग्नोस होगा, और अगर इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो सकती है। बात भारत की करें तो हर साल 50,000 बच्चों में कैंसर डायग्नोस होता है, यानी हर 11 मिनट में एक बच्चा कैंसर से पीड़ित हो रहा है। बात साफ है, भारत में कैंसर डायग्नोस होने में देरी हो रही है, ठीक से बच्चे को केयर नहीं मिल पाती है, दवाइयों तक पहुंच भी मुश्किल है, पैसों की कमी एक अलग समस्या है, और फिर लोगों द्वारा ये मान लेना कि कैंसर का तो कोई इलाज है ही नहीं। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली से डॉक्टर रचना सेठ, जो ऑन्कोलॉजी डिविजन में है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर रचना, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विंट हिंदी पॉडकास्ट पर।
नमस्ते। नमस्कार
जी। मैम, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। मैंने आखिरी में भी कहा कि कई लोग ये मान लेते हैं कि कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, कितनी सच्चाई है इस बात में?
आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा है, और ये एक गलत धारणा है पूरे समाज में, और खास करके हमारे देश में, और कुछ और देशों में भी, या कुछ राज्यों में, पूरे देश में तो नहीं कहें, क्योंकि जैसा आपने कहा जागरूकता तो फैल रही है, और कुछ हमारी सोच कुछ लोगों की बदल रही है, कुछ लोगों की सोच उतनी नहीं बदल रही है, लेकिन ये कहना कि इलाज संभव नहीं है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट अगर ये कहें कि बड़ों और बच्चों में क्या फर्क है, तो हम एक चीज यही हमेशा बताते हैं जब भी हमें पेरेंट्स से बात करनी होती है, कि ये मुख्य तौर पे एक जो डिफरेंस है बिटवीन चाइल्डहुड कैंसर और एडल्ट कैंसर में यही कि बच्चों का कैंसर बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, और अधिकतर हम पेरेंट्स से यही कहते हैं कि हमें क्यूरेटिव इंटेंट से आपका इलाज कर रहे हैं। शुरू में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं या फैमिलीज होती हैं जो हम पहले दिन पे कहेंगे कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और आजकल तो इतना विकास हो गया है और उसका प्रभाव हमारे देश में भी बहुत जल्दी से आ रहा है, जागरूकता बहुत फैल रही है और इलाज बहुत अच्छे तरीके से संभव है।
अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जैसे हम डेंगू मलेरिया में ऐसे अलग से बात नहीं करते हैं कि ये बच्चों का डेंगू या बच्चे का मलेरिया, लेकिन इसमें हमने चाइल्डहुड कैंसर को अलग से क्यों कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ी है?
तो जो मैंने पहले चीज बोली थी कि जो हमारा बच्चों के कैंसर में होता है वो हमारा एक उद्देश्य होता है वो हम जड़ से ठीक करने का होता है, जो अधिकतर या कई बार बच्चों एडल्ट में हम ये नहीं कह पाते कि हम क्यूरेटिव इंटेंट से कर रहे हैं, कभी हम उन्हें आराम का देते हैं या कुछ समय तक हमें एक क्रॉनिक डिजीज की तरह से ट्रीट करते हैं। आजकल बहुत इस तरह का इलाज भी हो गया है कि हमने ठीक करा, फिर 4-5 साल चल गए, फिर कुछ दवाइयां दी, फिर चल गए एडल्ट में। बच्चों में लेकिन हमारा इंटेंट होता है कि हम उसे जड़ से ठीक कर पाए, पहली चीज वो। दूसरी चीज जो होती है कि जैसे एडल्ट में हम कहते हैं कि हमका जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, थायराइड का कैंसर, तो ये सारे अंग वाले कैंसर बच्चों में नहीं होते हैं, बच्चों में जनरली कॉमनेस्ट होता है ब्लड कैंसर, दिमाग का कैंसर, गिल्टियों का कैंसर, ये या कोई छोटे मोटे अंग का कैंसर हो गया। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, क्योंकि ये सारी जानकारी हमारे पास होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जो हम एडल्ट्स में कहते हैं कि बहुत सारे कैंसर जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, कैसे हम या फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई टोबैको ले रहा है, स्मोकिंग है, ये सारी चीजें बहुत रिलेटेड है एडल्ट कैंसर में, लेकिन बच्चों के कैंसर में अधिकतर कारण नहीं पता है। चौथी जो एक डिफरेंस है कि ट्रीटमेंट संभव है, ट्रीटमेंट भी हम संभव कर पाते हैं बच्चों के कैंसर में,
ठीक
है, थोड़ा कभी कभी एग्रेसिव होता है, तेज भी होता है, दवाइयां भी स्ट्रांग लेनी पड़ती है, लेकिन हमारे बच्चे झेल लेते हैं, जो बड़े तो ये, लेकिन इलाज जो है वो बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं है, है ना। अच्छा, तो ये साइड इफेक्ट्स कुछ कभी कभी उसी टाइम उत्पन्न हो जाता है इलाज के, कभी वो आगे जाके उत्पन्न होता है। और एक और जो मेरे समझ में होता है डिफरेंस आप जो कह रहे थे बच्चों में और एडल्ट में, वो ये है कि बच्चों का इलाज ना एडल्ट कैंसर में नहीं होना चाहिए, बच्चों को बच्चों के डॉक्टर समझते हैं। तो मेरे को लगता है पीडियाट्रिक कैंसर्स का, पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर्स जो होते हैं वहां पे इलाज होना सबसे अनुकूल रहेगा।
अच्छा, आप सेंटर्स की जो बात कर रही हैं, तो भारत में कौन से टॉप चाइल्डहुड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, ऐसा कोई?
हाँ, भारत में बहुत सारे हैं, इनफैक्ट एवरी स्टेट वुड हैव अ गुड पीडियाट्रिक, वन और टू पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर्स। पर मेरे को जो जैसे बिल्कुल ही ओपन याद आ रहा है, टीएमएस टाटा मेमोरियल है मुंबई में, टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में है, दिल्ली में देखे तो एम्स तो है ही, और एम्स में भी हमारे कई जगह पे इलाज हो रहा है, राजीव गांधी है, दिल्ली में प्राइवेट सेंटर्स और भी हैं, जैसे गंगाराम है, अपोलो है, फोर्टिस है, मतलब
हर राज्य में क्या एक दो ऐसे हैं, ऐसे एक दो सेंटर्स हैं।
वेलोर है, साउथ में वेलोर है, वेलोर का कैंसर सेंटर चेन्नई में है, अदियार है, अपोलो है, पीजीआई है चंडीगढ़ में। सो मतलब सेंटर्स तो प्रैक्टिकली हर स्टेट में है।
अच्छा, लक्षणों के बारे में थोड़ा ये बताइए कि आम लोग जब मतलब वो घर पे जिनके बच्चे हैं तो वो ऐसे कौन से लक्षण देखकर मतलब कब उन्हें फिर डॉक्टर के पास जाकर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, कौन कौन से वो लक्षण है?
हाँ जी, बहुत ही उचित सवाल है, स्पेशली बच्चों के संदर्भ में, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चों में कभी कभी कैंसर मिस हो जाता है, मिस भी हो सकता है, क्योंकि दो चीजें होती है, या तो लक्षण बिल्कुल ग्लेयरिंग हो, एबनॉर्मल हो, या बिल्कुल ही हटके हो, तो हम पकड़ लेंगे जैसे एडल्ट्स में होता है ना, कि बिल्कुल ये देख गया कि कहीं से है ना खून आ गया खांसी में, है ना, ब्रेस्ट में लंप आ गया, विजिबल आ गया, है ना, जैसे अगर ब्रेस्ट का कैंसर हो गया या लंग्स का कैंसर होगा, ऐसा बच्चों में कहते हैं कि दो तरह की चीजें होती है। कभी कभी कॉमन डिजीजेस के सिम्टम्स भी ये मिमिक कर जाते हैं, जैसे बुखार। अच्छा। बच्चों में होना बहुत कॉमन चीज है ना, तो ये हम कई बार सोचते हैं कि कैंसर नहीं हो सकता, गिल्टियां होना, बच्चों में खांसी जुकाम भी होगा तो लिम्फ नोड्स निकल आएंगी, बच्चों में खून की कमी होना फिजियोलॉजिकल भी हो जाता है, कभी आयरन डिफिशियंसी हो गया, छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी, न्यूट्रिशनल हो गया, इससे भी हो सकता है खून की कमी, तो हम कई बार इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये बुखार आना, पैरों में दर्द होना, हल्का सफेदपन आना, गिल्टियां होना, ये सब नॉर्मल करके हम टाल देते हैं, बट इट इज नॉट द केस। अगर ये एक समय तक के लक्षण चलते जाए तो हमारे को शंका होनी चाहिए, या जो भी फिजिशियन देख रहा है उसको डाउट होना चाहिए कि कहीं ये कैंसर का संकेत तो नहीं दे रहा, एक चीज। दूसरी चीज, कभी कभी बिल्कुल अनयूजुअल होते हैं, तो वो तो खैर आपको इतना, जैसे कभी कोई दौरा आ गया, या कोई लकवा आ गया, या पीलापन आ गया, या बहुत बड़ी गिल्टी आ गई, पेट बहुत सूज गया, या खून के चित्ते आ गए, तो फिर हम सांस फूलने लग गया, तो फिर तो हम चले बिल्कुल ही सफेदपन आ गया, तब तो हम पहुंच ही जाएंगे अस्पताल में, तो ये लक्षण हो ही जाते हैं। बट कभी भी कभी ये होता है अक्सर कि ये लक्षण हमसे मिस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। आंखों का हम भेंगापन, रेटिनोब्लास्टोमा का आपने नाम सुना हुआ है, डब्ल्यूएचओ जैसे आपने मेंशन करा था, डब्ल्यूएचओ को भी, तो डब्ल्यूएचओ ने भी 6 डिजीजेस जो आइडेंटिफाई करी है उसमें रेटिनोब्लास्टोमा जो आंखों का ट्यूमर है, तो उसमें भी कई बार हम भेंगापन एक सिम्टम है, लक्षण है आई के कैंसर का, लेकिन कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, दिखा लेंगे बाद में, उसी में चीज मिस हो जाती है और आगे तक पहुंच जाती है। तो लक्षण का तो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है,
यानी बच्चों के मामलों में मतलब लाइटली तो बिल्कुल ही ना ले, दादी नानी के नुस्खे भी ना अपनाए, सीधे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं ताकि चीजें डायग्नोस हो सके, पता चल सके। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने बताया, इलाज तो है, सेंटर्स भी हैं, लेकिन इसके खर्च के बारे में थोड़ा बताइए, क्या वाकई एक्सेसिबल है, हर लोग सेंटर्स तक पहुंच के अपना इलाज करवा ले पाते हैं या नहीं, मतलब क्या इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है या कितना क्या होता है?
तो दो चीजें हैं, एक तो सुविधा जनरली बड़े अस्पतालों में होती ही है अवेलेबल, तो ये एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जहाँ हमें शक हो और अगर हमारे पास सुविधा नहीं है तो हमें रेफर कर देना चाहिए। अर्ली रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम ट्रीटमेंट की। अगर हमें लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे, हम सक्षम नहीं है किस भी कारण से, या तो जांचें पूरी नहीं है, इलाज सारा उपलब्ध नहीं है, तो हमें रेफर कर देना चाहिए जो भी उनके साथ उनके पास में अप्रोप्रिएट सेंटर है। दूसरा, जो सेंटर ट्रीट कर रहे हैं उनके पास में, जैसे ये डिफरेंस सबको ही पता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेंटर्स में या ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं कुछ, तो गवर्नमेंट सेंटर्स में जनरली दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। प्राइवेट में यदि अपने भी लेते हैं तो उस टाइम पे वो वाले क्लाइंटें जाती है जो खुद अपना अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो नहीं, हमारी जो आम जनता है वो गवर्नमेंट सेंटर्स में अगर आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मरीज होगा जनरली गवर्नमेंट सेंटर में जो पैसे के अभाव से इलाज नहीं करा पाए। आजकल हमारे पास सरकार की भी योजनाएं हैं, और दूसरा है कि आपने देखा होगा कि गैर सरकारी संस्थाएं जो है, एनजीओज हैं, फाउंडेशन हैं, ये आजकल बहुत आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और वो गवर्नमेंट सेंटर्स में तो करते ही हैं, वो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेंटर्स में भी करते हैं। तो बच्चों का इलाज कैंसर का, मुझे नहीं लगता कि हमारी जानकारी नहीं हो या हमारी कोई गलत धारणा हो तो हम नहीं कराएं, अदरवाइज पैसे के अभाव से मेरी समझ में शायद इलाज ना हो देश में। हम लोग नहीं, आजकल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं मानेंगे इस चीज को। हाँ, अगर बहुत ही महंगा है कि कोई इम्यून थेरेपी देनी है या ट्रांसप्लांट है तो वो तो बहुत कम लोगों में चाहिए होगा, वहां कह सकते हैं हम कि पैसे के अभाव से हम नहीं बढ़ पाए।
अच्छा, इससे जुड़े आप किसी और स्टिग्मा या फिर मिथ जो होते हैं या फिर कुछ गलत फहमियां हैं जो लोगों की दूर करना चाहें चाइल्डहुड कैंसर से जुड़े?
तो यही है सबसे ज्यादा कि क्योरेबल नहीं है, हम लोग
हाँ, ये तो
ये क्योरेबल नहीं है। और एक मतलब पहले से ही ऑल्दो ये एटीट्यूड हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, बट स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन इन दिस। क्योरेबल पे कह देंगे कि वापस आ जाएगा, सारे कैंसर वापस नहीं आते, पहली बात आ भी जाएंगे तो आजकल रिलैप्सिस का भी ट्रीटमेंट अच्छे से उपलब्ध है। दूसरा एक जो जब कैंसर होता है तो भी वो फैमिलीज बाकी फैमिली मेंबर्स से सपोर्ट नहीं पा पाते हैं, ये चीज है। तो वो जो फैमिली सोशल इमोशनल सपोर्ट जो फैमिलीज प्रोवाइड कर सकती हैं वो आजकल नहीं मिल, कई फैमिलीज को नहीं मिलता है।
अच्छा डॉक्टर, आखिरी में मैं दो चीजें आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि सुविधाएं सही बातें बढ़ रही हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको दिख रहा है, आप कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस बहुत सारे हैं, तो फिर भी आपको क्या लग रहा है कि किस मामले में कमी रह गई है जिस वजह से ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है? और दूसरा ये कि आप लोगों की, आप डॉक्टर्स के बीच भी कई सारी इस बात को लेकर चर्चाएं तो चलती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आप सिस्टम या गवर्नमेंट के सामने आपको जो लगता है कि यार ये चीजें पहले एड्रेस होनी चाहिए, यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन, ये मांगे पूरी होनी चाहिए इस मामले में?
मैं सोच रही हूँ कि हम पीछे, आप सोच रहे नंबर्स बढ़ रहे हैं या कुछ है, मैं सोच रही हूँ हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारे हम पीछे नहीं है, हमारी हम भी डायग्नोज ज्यादा कर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि सब उभर के आ रहे हैं। पहले गर्ल चाइल्ड का कोई इलाज नहीं करता था, मैं उसको दूसरे से देखती हूँ। मैं सोचती हूँ आजकल फैमिलीज आती हैं, पूरा गर्ल चाइल्ड के लिए भी उतनी मेहनत करते हैं और पूरा इलाज कराते हैं, तो मैं उसे दूसरी तरह से देखना चाहूंगी कि तो ओवरऑल मुझे तो लगता है कि प्रगति ही है, पर हाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से, आप जो कहते हैं, मुझे दो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा लगती हैं कि एक तो रहने की सुविधा, क्योंकि बच्चे और फैमिली, जैसे हमारे सेंटर कोई देख लें तो बिहार यूपी से कितने ज्यादा रेडी
के कई लोग घर छोड़ कर आते हैं, सही बात,
तो उनके लिए अरेंज करना कई बार, और वो मतलब ये एक मेजर हमारे लिए काम होता है कि हम किस एनजीओ में कहाँ पे इनको अरेंज कर पा रहे हैं, धर्मशाला में, अगर उनको वो सुविधा एक और मिल जाए तो आई थिंक एक वो। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ी और इजीली अवेलेबल हो जाए हमारे, जैसे आयुष्मान, किरण, और ये, और इसका सिस्टम और स्ट्रीमलाइन हो जाए और जैसे वाइडली अवेलेबल हो जाए, या बच्चों के लिए ब्लैंकेट की अवेलेबल, क्योंकि सब लोग तो बेनिफिशियरीज होते नहीं है कि उनका नाम ही है उस आयुष्मान भारत वाइड लिस्ट में, या यू नो रैंक के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स कई बार इनके लिए बहुत ही कष्टदायक चीज होती है कि हम यहाँ बिहार जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। फैमिलीज बहुत परेशान होती हैं जब आते हैं, सारा मनी एग्जॉस्ट हो जाता है जब तक हमारे पास पहुंचते हैं, तो मेरे को लगता है इनके लिए यदि, क्योंकि ये ठीक होने की पूरी क्षमता रखते हैं,
मतलब जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक थोड़ा सा और पुश मिल जाए तो कई
थोड़ा सा
चीजों में
बहुत इम्प्रूवमेंट है,
बदलाव
इट्स
आ
नॉट दैट
सकता है।
बहुत पहले से सुधार है, हमें
पहले
बहुत,
से सुधार
हम
है।
बहुत सरकार से हेल्प लेते हैं और बहुत पेशेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड ये रैन से, आयुष अम्ब्रेला स्कीम से, आयुष्मान भारत से, इनके जो पैकेजेस हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना जी आपका क्विंट हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर से, मेरे साथ हैं रितु भल्ला। हाय रितु, कैसी हैं आप?
हाय प्रतीक, आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू।
और रितु के साथ उनके हस्बैंड चंदन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं जो खुद भी चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर है। चंदन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्विंट हिंदी पॉडकास्ट पर।
थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच।
तो रितु आपसे शुरू करते हैं, मैं यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपकी ओवरऑल जो जर्नी है वो कैसी रही, तब से जब पहली बार आपको पता चला था कि आप चाइल्डहुड कैंसर से पीड़ित हैं और अब आप एक सर्वाइवर हैं, तो इस दौरान आपकी लाइफ पूरी कैसी रही, मैं ये जानना चाहूंगा। जी
और दोनों ही साल में, क्योंकि कैंसर है तो उसके साथ बहुत सारे स्टिग्मा और मिक्स अटैक थे, बहुत सारा मतलब सोशल प्रेशर था, बहुत सारे इश्यू थे जो कि फेस करने पड़े। लेकिन या कैंसर की जर्नी जो थी मेरी बहुत ही पेनफुल थी, बट व्हील पार बनाई रखी क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी परेशान थे और आगे मुझे अपना एम दिया चेंज करना था और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अपने करियर भी किया और आज मैं एक प्रोफेशनल वर्किंग वूमन हूँ विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट। वी हैव डेवलप्ड किड्स कैंसर नेट सर्वाइवर ग्रुप जिसमें हम मिलकर अवेयरनेस करते हैं, इश्यूज के बारे में बात करते हैं, सर्वाइवरशिप की इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत सारे सर्वाइवरशिप प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो यस, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
अच्छा चंदन, आप बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में और किस तरीके के कैंसर से आपने लड़ाई लड़ी है और आप अब आप एक सर्वाइवर हैं, तो आप अपनी दोनों जिंदगियों को कैसे देख रहे हैं?
तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि मेरी जर्नी जब 2005 में कैंसर के साथ स्टार्ट हुई थी, तब मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। ट्रीटमेंट के लिए मैं दिल्ली आया और जब मैं, क्योंकि दिल्ली एक मेरे लिए अजनबी शहर था, यहाँ पे ना मेरे कोई दोस्त थे ना ही कोई ऐसा था जिससे मैं बात कर सकता था, मेरी लाइफ सिर्फ घर और हॉस्पिटल के बीच में सिमट के रह गई थी। तो जैसे ही मेरा मेंटेनेंस खत्म हुआ, मैं चाहा कि मैं गांव जाऊं और उसके बाद जो गांव में मेरे साथ हुआ वो मेरी मतलब एक तरीके से आंखें खोलने वाला था। जितने भी मेरे दोस्त जिनको मैं अपना अच्छा दोस्त मानता था, जिनके साथ मैं खेलता था, उन लोगों ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया।
क्या जब उम्र मैं, क्या थी आपकी तब चंदन उस वक्त?
मैं उस समय 12 साल का था।
ओके।
तब की बात है ये, उन लोगों ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, वो अवॉइडेंस कम्युनिटी की तरफ से थी, उनके माँ बाप ने शायद ये बताया होगा कि उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं खेलना है, और बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे थे। जब मैं वापस दिल्ली आया तो मैंने अपने पापा से एक ही बात बोली कि मुझे अब वापस गांव नहीं जाना है। और फिर 2006 में हमारी जर्नी शुरू हुई केसीके के साथ, जब हम लोगों ने 4-5 सर्वाइवर्स मिल के, इसमें से एक रितु भी थी, केसीके ग्रुप की शुरुआत की कैन किड्स के बैनर के तहत, जिसमें हम एक ही तरीके के, किसी न किसी तरीके से हम सभी लोगों को किसी न किसी तरीके का स्टिग्मा वायसेस झेलने पड़े थे, और उसको समझते हुए हमने चाहा कि क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें हमारे जैसे लोग हों, और हमारे जैसे लोग हों जिनसे हम आपस में चीजें शेयर कर सके, बात कर सके, और इससे इस बीमारी से मिलके लड़ सके।
ओके। लेकिन चंदन, जब आप कह रहे 12 साल की उम्र से डायग्नोस हुआ, आपको लोग अवॉइड कर रहे थे, दोस्त अवॉइड कर रहे थे, भले ही किसी भी वजह से हो, तो तब आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी हो गए। आपने बताया भी कि आपने अपने फादर को कह दिया कि आप गांव वापस नहीं जाना चाहते, तो आपने ये ओवरऑल इस पूरी फीलिंग से कैसे फाइट किया, क्योंकि आपको मतलब कैंसर जैसी अलग एक बीमारी तो थी ही, साथ ही साथ आपको इससे भी फाइट करना पड़ा, तो इससे आप कैसे निकले बाहर?
सो ये थोड़ा सा मुश्किल था, बट एक होता है ना, एक अंदर से जज्बा था कि मुझे जीना है, और एक और भी था कि शायद मैं ये मान लिया था उस टाइम पे कि अगर नहीं भी जी पाया तो जितना दिन मेरी जिंदगी बची हुई है उतना उतने उस जिंदगी को मैं बहुत अच्छे से जीऊंगा। सो जब मेरा ट्रीटमेंट होता था तब भी मैं मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करता था, हालांकि मेरे परिवार के लोग परेशान रहते थे, मैं उनको भी हंसाने की कोशिश करता था, उनको भी खुश रखने की कोशिश करता था। फिर जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था मैं सोचता था कि हम ऐसा क्या करें कि जिस वजह से मैं ये इन सब चीजों से बाहर निकल सकूं, ये कैंसर की बीमारी से बाहर निकल सकूं, स्टिग्मा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है उससे बाहर निकल सकूं। और उसी दौरान हम लोग एक कैनक्रिट्स के प्रोग्राम में मैं, रितु और 3-4 सर्वाइवर्स और हम एक साथ मिले।
रितु, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपके लिए वो कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप आज एक सर्वाइवर हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं?
बिल्कुल प्रतीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे चंदन ने एक सोशल इश्यू के बारे में मेंशन किया कि बहुत ही ज्यादा अवॉइड किया, सिमिलर चीज मेरे साथ भी हुई थी और मेरे साथ तो और भी इश्यूज हुए मतलब सोसाइटी में मैंने जो देखे। कंप्लीशन के बाद मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाह रही थी और मैंने किसी को ही आगे लेते हुए मैंने अपना पहला एम की तरफ कदम उठाया और मैंने बैंकिंग में जाके इंटरव्यू देने की सोची। वो मेरा पहला जिंदगी का इंटरव्यू था और जहाँ पर मुझे इंटरव्यू फॉर्म भरने को कहा गया और उसमें कुछ स्कैन मतलब होता है ना, जैसे आप बीमारी की कोई हिस्ट्री पूछ लेते हैं वहाँ पर इंटरव्यू फॉर्म में, तो वो मुझसे पूछा गया और मैंने उसमें लिख दिया। क्योंकि हम जैसे कि चंदन ने बताया हम केसी के पे काम कर रहे थे, हम कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहे थे, सो आई वॉज वेरी वल्नरेबल अबाउट इट कि मुझे बताना चाहिए लोगों को ताकि जागरूकता फैले, तो मैंने उसमें लिखा। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू ने पूछा कैसा आपको कैंसर, एंड इट वॉज अ ग्राउंड स्टाफ लेवल जॉब और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपको कैंसर का शायद दोबारा हो सकता है और उसकी वजह से बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है तो हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ स्टिग्मा, दैट वाज कम्प्लीटली नॉन एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। आप ये बीमारी जो है कुछ नॉन बीमारी नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है पहली बात, और आप क्लेम नहीं कर सकते ऐसे किसी के मुंह पर, नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं दे सकते जॉब बेसिस ऑन कि आपको कैंसर का, दैट इज रॉन्ग।
अच्छा चंदन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ट्रीटमेंट के बारे में, खासकर कि कैसा रहा वो वाला आपका टाइम, कितना स्ट्रगलिंग था, कितना पेनफुल था उस वक्त, आपको किस तरह से सपोर्ट मिला, क्या रहा उस टाइम आपके साथ? जी
ट्रीटमेंट तो ऐसा, जैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक लंबा ट्रीटमेंट होता है जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक का ट्रीटमेंट होता है, और मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 2.5 ईयर, ढाई साल तक चला। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं आपका, मतलब फर्स्ट 6 मंथ का बहुत एक्टिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको हैवी कीमोथेरेपी के डोजेस दिए जाते हैं, रेडिएशंस होते हैं, ये सारी चीजें होता है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और मेरे केस में भी बहुत ज्यादा पेनफुल था। आपको बायोप्सी वगैरह जब करवाना होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, आपको 6 महीने तक कंटिन्यूसली आपके हाथ या पैर में कैनवाला लगा होता है ताकि आपको कीमोथेरेपी के डोजेस दिए जा सके और बाकी जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो दिए जा सके। आपके बाल उड़ जाते हैं, आपको भूख लगना बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कीमोथेरेपी की वजह से होता है और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ट्रीटमेंट एक तरीके से बोला जाए जिसको कैंसर है उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन ये एक पेनफुल ट्रीटमेंट है। आज के टाइम पे ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ है, जो हमारे टाइम पे था 15 साल पहले उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है ट्रीटमेंट, और टाइम भी थोड़ा कम हुआ है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे साइंस हमारा विकसित होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी विकसित होता जा रहा है और सर्वाइवल रेट भी इम्प्रूव होता जा रहा है। बट हाँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, लंबा प्रोसेस है, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रख के ट्रीटमेंट करवाए तो सफलता जरूर मिलती है।
बिल्कुल हाँ, वो कहते हैं डर के आगे जीत है।
बिल्कुल
रितु, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार एक सर्वाइवर आपके मन में भी कुछ बातें जरूर होंगी जो आप चाहेंगी कि अभी जो कैंसर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं या जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपका कुछ मैसेज होगा जो आप चाहेंगे उनके साथ शेयर करना?
जरूर प्रतीक, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकती हूँ क्योंकि जब किसी सर्वाइवर को ऐसे कैंसर की जर्नी फेस करनी पड़ती है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ही हताश वो पूरा लम्हा हो जाता है और या फिर पूरी जर्नी बहुत डिप्रेशन में निकल सकती है। लेकिन यदि आपके आपके पास कोई ड्रीम है, कोई आपने एक डेस्टिनेशन बना रखी है, सोच रखी है जहाँ आपको पहुँचना है, तो वो आपको हिम्मत देती है, वो जज्बा देती है कि आप एक हार्ड पाथ को पूरा कर सको, कंप्लीट करके आगे बढ़ सको, राइट? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो कैंसर ही नहीं और भी तरीके की डिफिकल्टीज आती है जिनको आपको फेस करना ही पड़ता है. तो मैं उन सारे कैंसर सर्वाइवर्स को यही बोलना चाहूंगी कि यदि आपको पेन है तो आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करिए जिससे आपका दिमाग और जितना भी आपका ध्यान है वो सब डाइवर्ट हो. आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, वीडियो देखिए. आजकल कितना ही कंटेंट है सोशल मीडिया पे जिससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जिससे माइंड को काम डाउन किया जा सकता है. और उनके पेरेंट्स को भी स्पेशली, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चा एक सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एज अ आइडल देखता है कि वो कैसे फील कर रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस सिनेरियो में, राइट? तो पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि आप निराश ना हो. जैसे कि चंदन ने बोला कि कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो आपको थोड़ा धीरज रख के चलना पड़ता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं. लेकिन हाँ, वो एक टाइम आता है जब वो पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है और वो पूरा समय निकल जाता है और सब ठीक हो जाता है.
बिल्कुल, और जब ठीक होता है तब मतलब मैं आप दोनों का जो एक लंबा जर्नी जो रही है और उसके बाद आज पूरी जो तस्वीर बदल गई, आप लोग भी बहुत अच्छा फील करते होंगे इसको लेकर. चंदन, एक आखिरी सवाल है मेरा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप दोनों एक साथ भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक शॉर्ट में ये भी बताइए कि आप दोनों के मिलने की क्या कहानी रही इस जर्नी के दौरान.
हम दोनों की मिलने की कहानी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम दोनों ने साथ में किसी के साथ शुरुआत किया था, हम दोनों सर्वाइवर्स थे, हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे जब से हम मिले तभी से. हमारे मिलने की कहानी 2010 में शुरू हुई थी जब हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जा रहे थे. तो हमारी जो पहली, वो कहते हैं ना कि जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं, वो 2010 में आई थी और वो हम साथ में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उस दौरान.
तब सर्वाइवर्स थे मतलब आप?
हाँ, दोनों हम उस टाइम पे 2010 में हम सर्वाइवर्स ही थे और हम लोग 10 साल साथ में आज अच्छे दोस्त रहे. और हमने फाइनली 2021 में लास्ट ईयर हमने शादी करने का फैसला किया और हमने शादी की.
चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी कहानी भी बहुत अच्छी है और आपके स्ट्रगल से आई होप बहुत लोग सीखने को मिलेगा उन्हें भी. और
बिल्कुल,
और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज आप लोगों की जिंदगी की जो एक तस्वीर है पूरी तरीके से बदल गई है, आज आप बड़े बड़े मुकाम पर हैं. आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट.
थैंक यू प्रतीक. मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूंगा. सबसे पहले तो उन बच्चों को जो जिनका इलाज चल रहा है कि वो घबराए ना, कैंसर का इलाज संभव है और वो ठीक हो सकते हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं. और जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं. माँ बाप के लिए ये मैसेज है कि आप घबराएं नहीं, आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं. लोग आपसे आके बोलेंगे नहीं ट्रीटमेंट कैंसर का तो इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इलाज है. हाँ, ये एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा इसमें पैसे भी खर्च होता है, उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कैनकिड्स जैसी संस्था है जो आपकी हर समय मदद करेगी, हमेशा हाथ थाम के रखेगी. इस साल कैनकिड्स ने लक्ष्य रखा है कि 20,000 बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे और 20,000 बच्चों को सर्वाइव कराने की कोशिश करेंगे. और तीसरा और मैसेज सर्वाइवर्स के लिए, जो कि हम जैसे सर्वाइवर्स हैं जो कैंसर से लड़ के जीत चुके हैं और वो आज अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे आएं, लोगों से बात करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें कैंसर के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच पाएं.
बिल्कुल.
तीसरा जो मैसेज है हमारे सोसाइटी के लिए वो ये है कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो इससे घबराएं नहीं. अगर आसपास में आपको किसी को लगता है कि ये कैंसर इसको हो गया है, तो उसकी मदद करें, ना कि उससे दूर भागें.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितु, आपका भी शुक्रिया. चंदन, थैंक यू सो मच क्विंट हिंदी के साथ जुड़ने के लिए.
थैंक यू प्रतीक.
थैंक यू प्रतीक.
तो रितु और चंदन को सुनकर लगता है कि जहां डर है वहां कोई उम्मीद नहीं है, और जहां उम्मीद है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं है। कैंसर आपके मन, हृदय और आत्मा को नहीं छू सकता, इस बात को ध्यान रखिए। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे थे ये पॉडकास्ट। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इस पॉडकास्ट को आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन पॉडकास्ट समेत कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।